मोहोदयेन जुत्ता विजुदावी आसवा होती। जीव पैसाण मणवैण काय जुया मोहोदयेन जुत्ता फंदन विशेषा जुत्ता विजुदावी आसवा होती। जीव के प्रदेशों का जो स्पंदन विशेष है यानी आत्मा के प्रदेशों में, प्रदेश कहते हैं क्षेत्र के सबसे छोटे भाग को, तो आत्मा के प्रदेशों में जो स्पंदन विशेष होते हैं, जो हलचली होती है, मन वैण काय जोया, मन वचन और काय योग कहलाते हैं, वो मोहोदयेन जुत्ता मोह के उदय से युक्त भी हो सकते हैं, विजुदा भी है रहित भी हो सकते हैं। मन वचन काय के जो योग हैं वो बस यही आसवा होती, यही आश्रव होते हैं। मोह विभाग वसादो जी परिणामा हवंती जीवस ते आसवा मुनिजसु मिच्छताई अणेय विहा। मोह के विपाक के वश से, मोह के विपाक यानी विपाक अनुभव फलदान, मोह के परिणाम स्वरूप जे परिणामा जीवस हवंती, जो परिणाम जीव के होते हैं यानी जो भाव जीव में पैदा होते हैं मोह के परिणाम स्वरूप, ते वे मिथ्यत्ताई अनेय विहा, मिथ्यात्वादिक अनेक प्रकार के भाव होते हैं, उनको आसवा मुनिजसु आश्रव जानो। कम्मं पुण्यं पावं हेयुं ते सिंच होन्ति सच्छिदरा मंद कसाया सच्छा तिब्ब कसाया असच्छादु। कम्मं पुण्यं पावं, अब आश्रव से जो कर्म होता है, आश्रव का मतलब क्या है, जो कार्मण वर्गणा विश्रसोपचय के रूप में जीव के प्रदेशों में लगी हुई है, जैसे हमने उदाहरण दिया था कि बाजार से निकलते कपड़े में धूल लग जाती है, अब धूल आँख में चले जाए तो उसकी अलग स्थिति है, लेकिन कपड़े में लगी है। अब क्या होता है कि उसी प्रकार जीव जब जगत में यहाँ वहाँ गमन करता है तो उसके आत्म प्रदेशों के साथ भी कुछ कार्मण वर्गणा रूपी परमाणु चिपक जाते हैं, लेकिन वो बंध नहीं है, वो स्वतंत्र हैं, बंधे नहीं हैं, सिर्फ ऐसे लगे हुए हैं। लग जाना अलग है और बंध जाना अलग है। जो आँख में चले गई धूल वो लगती है, और जो ऐसे ही ऊपर लग गई है वो आँख में चले गई वो बंधन रूप होती है, कष्टकारी होती है, और ऐसे ही जो लगी हुई है बालों में ऐसे धूल आ गई है चिपकी नहीं है, ऐसे कर दो तो झड़ जाए, अब तेल लगा हो तो चिपक जाती है। तो इसी प्रकार ये विसरसोपचय जब अपन राग द्वेष मोह रूप भाव करते हैं और जब मन वचन काय की चेष्टा में ये मोह के भाव समन्वित हो जाते हैं तब कर्म पुण्य और पाप रूप बदल जाता है। मतलब ये हुआ कि जो कार्मण वर्गणा थी वो आत्मा के साथ बंधन को तो प्राप्त होगी, लेकिन उसके बंधन आश्रव पूर्वक होता है, मतलब पुण्य और पाप में बंट करके फिर बंधेगी, काल भेद नहीं है। जिस काल में पुण्य पाप का विभाजन होगा उसी काल में आत्मा के प्रदेशों के साथ वो बंधन भी हो जाएगा। तो कम्मं पुण्यं पावं, कर्म दो प्रकार के हो गए, पुण्य और पाप। अब कार्मण वर्गणा में पुण्य और पाप का विभाग होना ही आश्रव है मन वचन काय के योग से, और फिर पुण्य और पाप का आत्मा के साथ बंध जाना, वैसे समय भेद नहीं होता इसमें, एक ही साथ ये दोनों काम होते हैं। पुण्य और पाप का बंटवारा भी उसी समय होता है, और पुण्य पाप का आत्मा के साथ जो बंधन है वो भी उसी समय होता है, लेकिन प्रक्रिया दोनों अलग अलग है। आत्मा के साथ जो बंधन हो रहा है वो एक अलग प्रक्रिया है, और कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिवर्तित हो रही है ये अलग प्रक्रिया है। कर्मण वर्गणा का कर्म रूप से परिणमन आश्रव है, और कर्म का आत्मा से बंधन बंध है। दोनों में अंतर आ रहा है समझ में? यानी वो प्रवेश जो हो रहा है, कर्मण वर्गणा जो है अप्रविष्ट है, यानी आत्मा से पृथक है वो, और कर्म जो है कर्मण वर्गणा कर्म बन गई तो अब कर्म आत्मा से अलग नहीं हो सकता, वो अपनी प्रक्रिया से ही अलग किया जा सकता है, वरना कर्म जब तक है तब तक रहेगा। इसका नाम आश्रव है। कर्मण वर्गणा कर्म बन जाए तो उसको आश्रव कहते हैं, कर्म आत्मा से बंधा रहे उसको बंध कहते हैं। कम्मम पुण्यम पावम, कर्म पुण्य और पाप दो प्रकार के हैं। तेसिम हेउम, उनके हेतु मैंने पुण्य का कारण क्या है, पाप का कारण क्या है, तो आचार्य कहते हैं सच्छिदरा, स्वच्छ भाव पुण्य का कारण है, और इतर यानि अस्वच्छ भाव पाप का कारण है। अब स्वच्छ और अस्वच्छ भाव किसको कहोगे, तो उसका खुलासा किया आचार्य महाराज ने, मंद कसाया सच्चा, कसाय मंद हो तो स्वच्छ भाव होता है, और तीव्र कसाया असच्छा हो, तीव्र कषाय हो तो अस्वच्छ भाव होता है। ये सारी बातें जो है शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य इससे जुड़ी हुई बातें हैं, और प्रवचन सार आदि ग्रंथों में भी जो उपयोग की चर्चा आती है, परिणाम की चर्चा आती है, सुपरिणामम पुण्यम अशुभम पावंत भणित मंडनीसु परिणामो नन्न गदो दुख क्षय कारणम समय, आगम में पुण्य का कारण शुभ परिणाम, शुभ परिणाम है, पाप का कारण अशुभ परिणाम है। पर पदार्थों के विषय में अगर शुभ भाव करो तो पुण्य होता है, अशुभ भाव करो तो पाप होता है, और परिणामो नन्न गदो, न शुभ में जाए गया हुआ और न अशुभ में गया हुआ जो परिणाम है वो दुखक है कारणम समय, वो शुद्ध भाव कहलाता है, और आगम में उसको दुखों के क्षय का कारण कहा गया है, यानी शुद्ध भाव मोक्ष का कारण है। ये खुलासा है प्रवचन सार में। फिर उसमें नौवीं गाथा में प्रवचन सार में इसके उपयोग नाम दिए हैं। अब उपयोग में क्या, उपयोग परिणाम और भाव, तीन शब्दों पर ध्यान देना आप, ये तीनों एकार्थवाची हैं। उपयोग कह लो, परिणाम कह लो और भाव कह लो। अब परिणाम को स्त्रीलिंग में कहो तो परिणति कह सकते हैं, नपुंसक लिंग में परिणमन कह सकते हैं, और पुल्लिंग में परिणाम कहते हैं उसको। और जैसे कल हमने भागचंद जी का एक गीत सुनाया था आपको, उसकी एक पंक्ति, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। तो परिणति सब जीवन की, सब जीवों की जो परिणति यानी परिणाम है, भाव है, वो तीन प्रकार के हैं। अब भाव कह लो या उपयोग भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि प्रवचन सार ग्रंथ में, यहाँ पर है प्रवचन सार ग्रंथ, अभी हम आप कुछ पंक्तियाँ पढ़ करके सुनाते हैं आपको प्रवचन सार की, तो उससे आपको भाव परिणाम और उपयोग तीनों का स्वरूप आपको समझ में आ जाए। कुंदकुंद स्वामी द्वारा रचित है प्रवचन सार ग्रंथ, महान ग्रंथ है। वर्णी जी महाराज कहते थे कि समय सार से भी गहन है प्रवचन सार। समय सार उतना डीप नहीं है, उतना गहन नहीं है जितना प्रवचन सार। वास्तव में आप जो उसकी गहराई में जाकर के देखें तो उसको समझ में आए, वरना क्या है, वरना तो इधर उधर से सुन करके कुछ भी बोल देना तो बहुत आसान है, गहराई में जाना उतना आसान नहीं है। जबरदस्त ग्रंथ प्रवचन सार, तो राजवार्तिक और प्रवचन सार पढ़ने वाला कभी संसार में भटक नहीं सकता है, इतना विश्वास लगता है। बाकी ग्रंथों को पढ़कर अगर भ्रमित बुद्धि हो जाता है तो भटक भी जाए। वैसे तो किसी भी जिनवाणी के स्वाध्याय से जीव संसार भ्रमण से बच सकता है, लेकिन स्वाध्याय में शर्त यह है कि जो अर्थ जिस शब्द का आचार्य महाराज बताना चाह रहे हैं वही अर्थ अपन ग्रहण करें। आप वहां आचार्य महाराज जो शब्द दे रहे हैं उसका तात्पर्य उनकी नजरों में कुछ और है, और अपन अपने मन का अर्थ निकालोगे तो फिर स्वाध्याय तो गलत हो जाएगा ना, भटक जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, और मूल बात तो यह है कि अपन कौन सा सूत्र या कौन सी गाथा सिद्धांत है और कौन सा सूत्र या कौन सी गाथा उपदेश है, इसका फर्क अगर समझ ले तो कभी भी स्वाध्याय में भटकन नहीं हो सकती। जिनवाणी में कुछ सूत्र उपदेश सूत्र हैं और बाकी सिद्धांत सूत्र हैं। उपदेश सूत्र को सिद्धांत सूत्र मानने के कारण बहुत सारी भ्रांतियां होती है। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, धर्म अहिंसा लक्षण है, धर्म अहिंसा लक्षण वाला है, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये भी है, प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। अहिंसा धर्म ये तो आपको समझ सबको आता, सब लोग सुन चुके, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, लेकिन हिंसा क्या चीज है ये बहुत कम लोग जानते हैं। सिर्फ किसी को मार देना या तकलीफ देना मात्र हिंसा है, ऐसा समझना भी भूल है, क्योंकि हिंसा का बड़ा विस्तार है। कभी कभी तकलीफ देने पर भी हिंसा नहीं कहलाती, और कभी कभी तकलीफ न देने पर भी हिंसा हो जाती। इसलिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा कि ये इतना जटिल है हिंसा और अहिंसा का विषय, कि गुरु जो कह रहे हैं बस उसको ही स्वीकार कर लो। तुम्हारी बुद्धि में अगर क्षमता हो तो बहुत खुशी की बात है कि तुम समझ करके उस बात को अपनाओ, लेकिन यदि क्षमता नहीं है तो मनमानी मत करना। क्या कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी बुद्धि में उतनी क्षमता नहीं है तो बस गुरु के वचनों को, जिनवाणी को बिल्कुल आंख बंद करके स्वीकार कर लेना। अगर जिनवाणी में लिखा है कि इस प्रकार से तुम्हें करना है कोई काम, तो फिर कभी ऐसी शंका मत करना कि ऐसा करने से तो हिंसा होगी और हिंसा से मेरी दुर्गति होगी। अभी कई लोग कहते हैं ना, वो कल जो दृष्टांत आया था, मेंढक फूल लेकर के निकला भगवान के पास अर्चना के भाव से, हाथी के पैर के नीचे दब गया। अब एक बार एक मुनिराज ने ये सब उपदेश दिया था, महाराष्ट्र की बात है, तो फिर किसी ने मतलब एकदम अवमानना के शब्दों में कहा कि क्या अपन लोग मेंढक हैं, यानी अपन तिरेंच तो नहीं, अपन तो मनुष्य हैं, इसलिए अपने को फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब देखो पंथवाद, ये पंथवाद की समस्या इतनी जटिल है कि जिसके दिमाग में वो बैठ जाए तो फिर उसको बहुत लंबा ट्रीटमेंट देने के बाद इलाज सही होता है। अब फिर दूसरा दृष्टांत देते हैं कि वो ग्वाले ने भी फूल चढ़ाया था, तो फिर यहां फिर प्रश्न करते हैं कि अपन ग्वाले हैं क्या, अपन तो जैनी हैं। फिर तीसरा दृष्टांत देते हैं, वो वज्र मुष्टि पहलवान का कल जो हमने बता रहे थे ना, उसने मुनिराज पत्नी ठीक हो गई, उसको जहर उतर गया पत्नी का रिद्धिधारी मुनि के कृपा से, तो फिर उसने क्या संकल्प किया था कि अगर मेरी पत्नी ठीक हो गई है और आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से उसका जहर उतर गया है, मैं सहस्र दल कमल से आपकी पूजा करूंगा। तो फिर कोई बोले कि भाई पहलवान का दिमाग घुटने में होता है, तो हर दृष्टांत में अगर आपका कोई पक्षपात होगा तो आप उसमें से उल्टा ही अर्थ ग्रहण करेंगे। अब फिर इस विषय पर कभी और अपन चर्चा कर सकते हैं, ये तो विषय ऐसा है कि लंबा विषय है और समझने योग्य विषय है। हिंसा और अहिंसा की जो बात आती है उसमें फिर सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कुछ चीज़ों में तो हिंसा को समझ रहा है लेकिन खुद जो दूसरे काम करता है उसमें उसको समझ में नहीं आता कि मैं हिंसा कर रहा हूँ कि अहिंसा। तो यहाँ सबसे मूल सूत्र जो सिद्धांत सूत्र है वो ये है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। अब ये सिद्धांत सूत्र है, ये लक्षण अगर किसी चेष्टा में घटित न हो तो फिर उसको हिंसा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। और फिर हिंसा का फल क्या है इस पर भी अपन ध्यान दें, हिंसा का फल सदगति है कि दुर्गति? दुर्गति है ना। तो फिर जिस क्रिया से ग्वाले की सदगति हुई, मेंढक की सदगति हुई और उस घुटने में दिमाग वाले पहलवान वज्रमुष्टि की सदगति हुई, आपकी उनकी भाषा में बोल रहे हैं, पहलवान का दिमाग घुटने में होता है ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो इन सब की सदगति हुई तो फिर ये मानना पड़ेगा कि हिंसा का फल सदगति भी हो सकता है। पर ऐसा माना जा सकता है क्या जैन सिद्धांत में? तो इसलिए हिंसा और अहिंसा का जो स्वरूप अपने दिमाग में बैठा हुआ है उसके बारे में अपन को पुनर्निरीक्षण करने की आवश्यकता है। एक बार फिर से आगम को देख करके अपने को विचार करना चाहिए कि मैं जो मेरी जो धारणा है वो कहाँ तक उचित है। फल की बात ख्याल में आ रही ना, हिंसा का फल क्या होता है, शास्त्रों में क्या लिखा है हिंसा का फल? बिल्कुल बिना बेधड़क आप बोल सकते हैं कि हिंसा का फल दुर्गति होती है। तो फिर जिसका फल सदगति हो रहा है वो क्या वस्तु है? इससे आप मतलब ये विवेक की बात है। अपन क्या है कि युक्ति से नहीं समझते किसी बात को, अंधविश्वास से किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो भ्रम पैदा हो जाता है। तो सदगति और दुर्गति रूप परिणामों को देख लो। परिणाम का अर्थ यहां पर नतीजा है, फल है। और यहां पर जो बता रहे हैं जीवो परिणमति जदा सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो सुद्धेण तदा सुद्धो भवति ही परिणाम सद्भावो। परिणाम की बात कर रहे हैं कि जब जीव, अब इसको यहां पर परिणाम और उपयोग को एकार्थवाची बता रहे हैं, फिर पंचास्तिका आदि ग्रंथों में उसी को भाव भी कहा गया है। भाव परिणाम और उपयोग, यहाँ परिणाम और उपयोग एकार्थवाची है। ये आचार्य जयसेन स्वामी की टीका में अपन देख सकते हैं। तद यथा, ये जयसेन स्वामी क्या करते हैं कि पूरी गाथा का अर्थ बता देते हैं पहले शब्दशः और उसके बाद फिर उसका भाव और बता देते हैं, तो पढ़ने वाले को कोई भ्रम न रह जाए। बहुत सुंदर टीका है जयसेन स्वामी की। अमृत सोन स्वामी जी की टीका तो महान है, उसमें एक अलग ही आध्यात्मिक प्रवाह है। अभी वर्तमान में कुछ लोग आचार्य अमृतचंद स्वामी को नकार रहे हैं, खैर ये आपका विषय नहीं है, आप लोग तो ठीक है सामान्य श्रावक हैं, लेकिन कुछ जो पढ़ने लिखने वाले जो लोग हैं वो आचार्य अमृतचंद स्वामी को नकारने लगे हैं कि भाई उनकी बातें तो भटकाने वाली है, ऐसी है वैसी है। पर वास्तव में देखा जाए तो आचार्य अमृतचंद स्वामी दिगंबर जैन आचार्यों में शिरोमणि आचार्यों के स्थान पर गिने जाने योग्य हैं। इतने उच्च कोटि के आचार्य हुए और कहीं भी स्खलित नहीं हुए, कहीं भी स्खलित नहीं है। अर्थ निकालने वाले का दिमाग स्खलित है, बिल्कुल हम दावे के साथ कहते हैं कि जो उन गाथाओं का उन पंक्तियों का अर्थ निकाल रहा है और उस अर्थ में उसको कुछ गलती नजर आ रही है उसके दिमाग में स्खलन है, इसलिए वो ऐसा उल्टा अर्थ निकाल रहा है। सीधा सीधा अर्थ निकालो। और फिर पहली बात तो ये है कि अमृतचंद स्वामी की भाषा का अर्थ निकालने के लिए पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य कहते थे कि अमृतचंद स्वामी जी की टीका को जिसने शब्दशः लगा लिया वो नियम से संस्कृत भाषा का विद्वान है, वो मामूली व्यक्ति नहीं हो सकता। और मामूली व्यक्ति अगर उसमें से गलती निकाल रहा है तो फिर वो पक्का है कि मामूली व्यक्ति है। वो विद्वान नहीं हो सकता। लेकिन कितनी विचित्र बात है कि अपन अपनी गलती ना निकाल कर आचार्यों की गलती वर्तमान काल में निकालने लगे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और फिर उस गलती का अपने पुण्योदय से जितना प्रचार कर सकते उतना प्रचार भी कर डालते हैं। और क्या होता है कि पुण्य के उदय में गलत चीज़ का भी अच्छा धड़ल्ले से प्रचार हो जाता है और लोग उस मान्यता को स्वीकार भी कर लेते हैं, भटक जाते हैं। तो अमृतचंद स्वामी कहीं गलत नहीं है, अर्थ निकालने में गलती हो जाती है तब लगता है कि गलत है। वास्तव में कभी भी कोई भी आचार्य गलत नहीं होते। ऐसा लगता है किसी को कि कोई आचार्य गलत होते होंगे? हो ही नहीं सकते। कहीं स्खलन हो सकता है और वो स्खलन अपना विषय नहीं है। वो स्खलन भी यदि उनसे हो जाए, उनने जो भी लिखा आंख बंद करके अपन स्वीकार करो सदगति होगी, ये दावा है, कभी दुर्गति नहीं हो सकती। गुरु की बात मानने पर जीव को तकलीफ हो सकती है लेकिन उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। तकलीफ होना अलग बात है, दुर्गति होना अलग बात है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य जयसिंह स्वामी, बहुत सुंदर दृष्टांत। यथा स्फटिक मणि विशेषो निर्मलोपी, जिस प्रकार स्फटिक मणि एक विशेष प्रकार का रत्न है, वो अपने आप में निर्मल होते हुए भी जपा पुष्पादि रक्त कृष्ण श्वेतोपाधि वशेन, रक्त कृष्णा श्वेत वर्णो भवती। जपा पुष्प यानी जो जासोन का फूल होता है, शू फ्लावर बोलते हैं, बड़े रंग का, अलग अलग रंग में आता है आजकल, लाल रंग का विशेष रूप से प्रचलन में होता है, तो उसकी संगति से, और या फिर किसी काले रंग की वस्तु उसके पास हो स्फटिक मणि के, तो वो काला दिखने लग जाता है। अथवा श्वेत सफ़ेद रंग का कोई पुष्प उसके पास रख दो तो स्फटिक मणि भी एकदम सफ़ेद लगने लग जाता है। तो इनकी उपाधि के वश से अर्थात इनकी संगति के प्रभाव से स्फटिक मणि का रंग भी लाल काला सफ़ेद हो जाता है। तथायं जीव, इसी प्रकार ये जीव है। जीव भी स्वभावेन शुद्ध बुद्धैक स्वरूपोपि, स्वभाव से तो शुद्ध बुद्ध एक चैतन्य स्वरूपी है, पर व्यवहारेण गृहस्थापेक्षया यथा संभवम, व्यवहार से गृहस्थ की अपेक्षा विचार करो तो यथा संभव सराग सम्यक तो पूर्वक दान पूजादि शुभानुष्ठानेन, सराग सम्यक के साथ, सराग सम्यक पूर्वक दान पूजा आदि शुभ अनुष्ठान के द्वारा, तपोधनापेक्षया और साधु की अपेक्षा से तू मूलोत्तर गुणादि शुभानुष्ठानेन परिणतः, मूल और उत्तर गुण आदि अनुष्ठान रूप से क्रिया रूप से परिणत होते हुए शुभो ज्ञातव्यः इति, उनको शुभ जानना, यानी जो गृहस्थ दान पूजा में लगा है सम्यक तो पूर्वक वो शुभ परिणाम वाला है, और जो साधु मूल और उत्तर गुणों के अनुष्ठान में तत्पर हैं, तपस्वी हैं, वो शुभ परिणाम युक्त माने जाएंगे। और मिथ्यात्वादि मिथ्यात्वाविरति प्रमाद कषाय योग पंच प्रत्यय रूप अशुभोपयोगेन अशुभो विज्ञेय, और पांचों प्रकार के आश्रम में जो डूबा हुआ है उस जीव को अशुभ भाव वाला जानो। निश्चय रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय आराधक निश्चय रत्नत्रय आत्मक शुद्धोपयोगेन परिणत शुद्धो ज्ञातव्य, और निश्चय रत्नत्रय स्वरूप जो शुद्धोपयोग है उसमें परिणत कोई जीव हो उनको शुद्ध भाव वाला जानना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि शुभ भाव वाला कौन है, अशुभ भाव वाला कौन है और शुद्ध भाव वाला कौन है, इसका स्वरूप यहाँ आ जाता है। कौन है अब भी बताया था, गृहस्थ की अपेक्षा जो सम्यक्त के साथ श्रद्धा के साथ दान और पूजा में लगा है वो शुभ भाव वाला है, साधु की अपेक्षा जो मूल और उत्तर गुणों के अनुष्ठान में तत्पर हैं वो शुभ भाव वाले हैं। अशुभ भाव वाले कौन है? तो बोल रहे हैं कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन पांचों आश्रवों में जो डूबे हुए हैं वो अशुभ भाव में तत्पर हैं। और शुद्ध भाव वाले कौन है? तो आचार्य कहते हैं कि निश्चय रत्नत्रयात्मक जो शुद्ध उपयोग है। अब निश्चय किसको कहते हैं? अभेद को यहां पर निश्चय ग्रहण करना, भेद जो है वो व्यवहार है और अभेद निश्चय है। तो अभेद रत्नत्रयात्मक जो शुद्धोपयोग में परिणत साधु हैं उनको शुद्ध भाव वाला कहते हैं। अब यहां पर कुछ शंकाएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी धारणा है कि चतुर्थ गुण स्थान में यानी अविरत सम्यक दृष्टि अवस्था में भी यदि कोई जीव अंतर्मुखी होकर आत्मानुभव में चला जाए तब तो उसका भाव राग और द्वेष रूप न होने के कारण शुद्ध होता है। पर आचार्य जयसेन स्वामी के वचनानुसार अपन विचार करें, यहां पर कोई भी अपनी मन की बात नहीं बताई जा रही, आचार्यों की विवक्षा है। इसके अनुसार विचार करने पर बात सामने आ रही है कि यहां निश्चय रत्नत्रय आत्मक निर्विकल्प समाधि है। अब विचारने योग्य बात यह है कि रत्नत्रय का स्वामी कौन है? अभी बहुत से लोगों की यह धारणा भी है, जैसे अभी मुंबई वाले आए थे, उन्होंने हमसे प्रश्न किया था कि वहां पर एक व्याख्यान चल रहा था, तब वहां किसी ने कहा था, कोई त्यागी वर्ग में ही पिछीधारी ने कहा था कि चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है, इसलिए चौथे गुण स्थान में चारित्र का अभाव नहीं है। और गोमटसार ग्रंथ में देखो, जीव कांड में, तो उसमें लिखा है चारित्तम नत्थि जदो अविरद अंतेसु ठाणेसु। जितने गुणस्थानों में अविरत है, अविरत भाव, उन गुणस्थानों पर्यंत चारित्तम नत्थि, चारित्र नहीं है। अब ये दोनों बात परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि सम्यक्त्वाचरण है, और फिर यहाँ गोमटसार में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि चारित्र ही नहीं। अब क्या करें? पहली बात तो ये है कि ये निश्चित समझो कि कोई आचार्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है, क्योंकि अभी जो गणित चलता है वो ऐसा चलता है कि ये तुम्हारी पार्टी की बात है, ये हमारी पार्टी की बात है, वो पार्टीबाजी आचार्यों में कभी भी नहीं है। जैन शासन में पक्ष विपक्ष कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? संभव ही नहीं है, क्योंकि जहां स्याद्वाद है वहां निश्चय ने भी स्वीकार है, व्यवहार ने भी स्वीकार है, पक्ष विपक्ष का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर दोनों बातों की विवक्षा, विवक्षा यानी बोलने वाले की इच्छा। अब कुंदकुंद स्वामी बोल रहे हैं कि सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, तो बोलने वाले की इच्छा या अभिप्राय क्या है? क्यों बोल रहे हैं वो, और किसके लिए बोल रहे हैं, किस प्रसंग में बोल रहे हैं? उपदेश सूत्र बोल रहे हैं या सिद्धांत सूत्र बोल रहे हैं? इतनी बातों का अगर अपन ध्यान रखें तो सब समाधान पूरा स्पष्ट हो जाता है। वहां पर दर्शनाचार की बात करते हुए बोल रहे हैं कि भाई सम्यक दर्शन का अगर आचरण करना हो तुम्हें तो फिर आठ अंगों का पालन करो। आ गया समझ में? वहां ये नहीं कह रहे कि चौथे गुण स्थान में आठ अंग होते ही हैं। अगर ऐसा मानोगे तो फिर नरकों में आठों अंगों की प्रवृत्ति बताओ कहां पर है, कहीं पर? देखो बहुत व्यापक सोचना पड़ता है अपने को, क्योंकि जो बात दिमाग में भरी है 25 साल से वो भरी तो है, लेकिन वो सही है कि नहीं है उस पर अपने को थोड़ा सा थर्मामीटर लगाना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी। और जांच करके देखो, अभी जो हम बात बता रहे हैं आपको चार वाक्यों में समाधान होता है, और जिद पकड़ लो तो चार सालों में भी समाधान नहीं होता। क्या समाधान निकला? प्रश्न यह है कि अगर आप ये मानो कि आठों अंग का आचरण चौथे गुणस्थान में नियामक है, तो फिर नरकों में बता दो आप कहां आचरण हो रहा है आठ अंगों का। नरकों में क्या कोई किसी का स्थितिकरण करता है या कर सकता है? कभी किसी काल में भी वो देव कोई आकर के वहां संबोधन दे दे वो अलग बात है, वो देव ने कर लिया, नरकवासी ने कुछ नहीं किया वहां। तो नरकों में क्या हुआ, उपगुहन होता है क्या नरकों में, प्रशम संवेग होता है क्या नरकों में?